का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं हेमंत जोशी की लिखी कहानी कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता। बंटी और बबली रामेश्वर करकेटिया के बड़े नटखट बच्चे हैं। बबली छोटी है और घर भर की डांटती है। बंटी बड़ा है, शैतानी से उसका मन अभी पूरी तरह से भरा नहीं है। बंटी अपनी बहन को बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि बबली के आने के बाद से उसके शान में कुछ कमी आ गई है। वो अपनी माँ से कई बार पूछ चुका है कि जब भी उन दोनों के बारे में कोई बात होती है तो बबली और बंटी ही क्यों कहा जाता है, बंटी और बबली क्यों नहीं कहा जाता। जैसे ही मार्च का महीना खत्म होने को आया और गर्मियों की छुट्टियां पास आने लगी, बबली और बंटी की सैर सपाटे की योजनाएं भी जोर पकड़ने लगी। उनकी फरमाइश थी कि इस बार छुट्टियों में किसी पहाड़ पर चला जाए। पापा, इस बार शिमला चलेंगे, बंटी ने कहा।
नहीं पापा, नैनीताल चलो ना,
बबली ने बंटी की बात काटी। बच्चों की बातें सुन सुन कर रामेश्वर करकेटिया मन ही मन मुस्काते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे बस सैर करना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे ये तय करना तो है, पर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का मकसद तो किसी भी हिल स्टेशन पर जाकर बस मौज करना होता है। वो ये भी जानते थे कि बबली जो कहेगी उससे ठीक उल्टा बंटी को कहना है, क्योंकि ये उन दोनों का पुराना खेल है जिसमें दोनों को मजा आता है। ये बात केवल रामेश्वर जानते थे कि कहाँ जाना है, क्योंकि ये बच्चों और खुद उनकी इच्छा पर नहीं है, बल्कि इस बात से तय होगा कि कहाँ की टिकट मिल पाएगी और कहाँ रहने की जगह मिल पाएगी। फिर एक दिन आया जब रात 10:30 बजे बंटी बबली रानीखेत एक्सप्रेस पर सवार हो पहाड़ की सैर पर निकल पड़े। करकेटिया साहब जब कुली को सामान ढुलाई के पैसे देकर लौटे तो देखा कि भाई बहन में खिड़की की सीट के लिए झगड़ा हो रहा था।
तुम मम्मी के पास जाओ, यहाँ मैं बैठूंगा, बंटी ने बबली को घुड़क कर कहा।
मम्मी देखो, बंटी मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहा है,
बबली ने अपना दांव खेला। पापा ने दोनों को समझाया कि रात में बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। माँ ने दोनों का ध्यान वहां से हटाने के लिए उन्हें खाने के लिए पूरियां और आलू की सब्जी दे दी। खाना खाने के बाद दोनों को नींद आने लगी और वो कहीं भी सोने के लिए तैयार हो गए। गाड़ी ने भी पूरी रफ्तार पकड़ ली थी। बंटी और बबली की नींद अभी पूरी भी नहीं हुई होगी कि काठ गोदाम आ गया। स्टेशन से बाहर निकले तो हल्का हल्का उजाला हो रहा था। नैनीताल की बस में बैठते ही खिड़की के लिए फिर से झगड़ा होना तय था, सो हुआ भी। लेकिन इस बार झगड़ा ज्यादा देर तक इसलिए नहीं चल पाया कि बस लगभग खाली थी। बंटी पीछे खिड़की के पास जा बैठा। नैनीताल में बबली और बंटी ने 10 दिन खूब मौज की। आसपास के तालाब और कस्बे देखे, नाव पर बैठे, आइसक्रीम खाई, बंदूक से निशाना लगाया और भी जो कुछ मौज वह कर सकते थे वह सब की। फिर वो भीमताल के पास ही नौकुचिया ताल की सैर करने गए। उस दिन दोनों बहुत शांत और एक बार कहने पर ही पापा या माँ का कहना मानते। पापा के आश्चर्य को कम करते हुए माँ ने बताया कि यह सब इसलिए हो रहा है कि पापा खुश होकर उन्हें पैडल बोट पर सैर करने दें। इसमें रामेश्वर को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। नौकुचिया ताल में एक नाव घंटे भर के लिए किराए पर ली गई और बच्चों ने ताल का कोना कोना छान मारा।
धूप तेज थी मगर बादल भी छाए हुए थे। बीच बीच में बादलों की छाया में तालाब की सैर करने में बहुत मजा आ रहा था। आखिरकार थक कर दोनों ने कहा कि अब किनारे चला जाए। या लिमका पिया जा सकता था। किनारे पर पहुंचते ही कहा गया कि प्यास लग रही है। मतलब साफ था, पर मां ने अनजान बनते हुए पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। इस पर छोटी यानी बबली ने बेहद उदास होकर पापा की तरफ देखा। फिर क्या था, सब चाय की दुकान पर थे। जब तक कोल्ड ड्रिंक्स आते, बंटी चुप कर कैसे बैठता। उसने कुछ कंकड़ उठाए और तालाब के किनारे जाकर उन्हें तालाब में फेंकने लगा। इस पर पापा ने उसे डांटा और अपने पास बुलाया। पास आने पर उन्होंने समझाने की कोशिश की, बंटी बेटे ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन कारण जाने बिना बंटी मानने को तैयार नहीं था। इस पर पापा ने उसे बताया कि ऐसा करने से तालाब भर जाएगा और फिर वह उसमें सैर नहीं कर पाएगा। आश्चर्य से बंटी ने कहा, पापा मैं तो तालाब के पानी को ऊपर ला रहा हूँ। पापा ने कहा, माना कि तुम्हारे कंकड़ फेंकने से पानी ऊपर आएगा, पर यह भी तो देखो कि ऐसा करने से तालाब की गहराई कम हो जाएगी। बंटी के पास आजकल हर सवाल का जवाब रहता है। उसने पलट कर दलील दी, पापा मेरे कुछ कंकड़ फेंकने से तालाब क्यों भरेगा, वो तो कितना गहरा है। पापा ने समझाया, देखो बेटा यहाँ हर साल तुम्हारे जैसे लाखों बंटी आते हैं, और मान लो कि हर एक बच्चा चार चार कंकड़ भी तालाब में फेंके तो हर साल तालाब में लाखों कंकड़ भर जाएंगे। फिर क्या कुछ सालों में ही ये तालाब पूरा नहीं भर जाएगा। अब तो बात बंटी की समझ में आ गई थी। उसने पापा से कहा, पापा पापा अब मैं तालाब में कभी कंकड़ या कचरा नहीं फेंकूंगा। और हाँ पापा, मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा कि तालाब में क्यों कंकड़ पत्थर या कचरा नहीं फेंकना चाहिए।
शाबाश,
पापा कुछ कहते इससे पहले ही बबली बोली। बंटी उसकी तरफ बढ़ा ही था कि पापा ने उसे रोकते हुए कहा, लो एक कहावत और बना लो अपने दोस्तों के लिए। बंटी ने फिर पूछा,
कौन सी कहावत।
इस पर पापा ने पूछा, तुमने वो कहावत सुनी है। बंटी ने पूछा,
कौन सी पापा।
बूंद बूंद सागर भर जाता, पापा ने कहा।
हाँ पापा, पर इससे उस कहावत का क्या।
अरे बुद्धू इसका नहीं, पापा ने प्यार से समझाया। कहावत तो अब ये बन गई है कि कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता। रामेश्वर ने बबली की ओर देखा, कहो बबली कैसी लगी ये कहावत।
बहुत अच्छी पापा,
बबली चहकी।
इस कहावत की मदद से मैं भी अपनी सहेलियों को तालाब में कूड़ा करकट और पत्थर फेंकने से रोक सकती हूँ।
गाथा में अभी आप सुन रहे थे हेमंत जोशी की लिखी कहानी कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।